और तीसरी चीज देखिए, वल फुरकान, हक और बातिल में फर्क करने वाली, ये बहुत अहम नुक्ता है। हक और बातिल को अलग करने वाला है ये कुरान, ये क्या है? यहां मैं अपने उन सारे साथियों और भाई बहनों के लिए बड़ी मोहब्बत और दर्द महसूस करते हुए बात करूंगी जिन्होंने अभी तक कुरान को समझकर नहीं पढ़ा। इस कुरान को वाकई हुदन और बय्यिनात मिनल हुदा नहीं बनाया। वो क्या है कि इस कुरान को पढ़ने से पहले या इसको पढ़े बगैर इंसान को हिदायत की बात समझ नहीं आती। सही क्या गलत क्या, भोले भाले लोग छोटे छोटे मसले पूछ रहे होते हैं। हर साल देखिएगा, दौरे कुरान होता है या रमजान आता है, हर साल वही मसाइल, छोटे छोटे, रोजा टूट गया, क्या आ गई तो रोजा टूट गया, और मैं सहरी में देर से उठी तो ये तो वो तो वो। मुझे बहुत प्यार आता है ऐसे लोगों पे, पहली बात है। मुझे ऐसे लगता है कि ये प्यासे हैं और इनको पानी चाहिए। लेकिन बात यह है, वजह उसकी क्या है कि फुरकान नहीं है। कुरान को समझकर पढ़ने के बाद फुरकान मिलता है। जहां भी लफ्ज कुरान पढ़ना मैं कहूं तो आप समझ जाइएगा कि इससे मुराद सिर्फ नाजरा नहीं है, इससे मुराद सिर्फ तजवीद भी नहीं है, इससे मुराद सिलेक्टेड आयात का कोर्स भी नहीं है, बल्कि इससे मुराद फातिहा से नास तक का सफर है, रूट टू फ्रूट। जब तक आप और मैं कुरान पाक के पहले लफ्ज से लेकर आखिरी लफ्ज तक समझते नहीं, अल्लाह की मुराद नहीं पता चलती, तो बात नहीं आएगी, हम समझ नहीं सकेंगे। हमें पता ही नहीं है कि सही क्या, गलत क्या, जायज क्या, नाजायज क्या, मुकम्मल क्या और अधूरा क्या, और इस तरह की बातें। इसलिए इस किताब को पढ़िए, ये आपकी मेरी जिंदगी की जरूरत है। चलिए, यहां तक तो कुरान की बात हुई। अगर आप इस आयत का अंदाज देखें ना, तो फुरकान लफ्ज के ऊपर जीम लिखा हुआ है, मुराद है कि जायज है कि आप यहां थोड़ा सा एक पॉज ले लें, यहां थोड़ा सा सोच लीजिए, सिमट लीजिए। और वो क्या है कि खुलासा कर देती है इतनी बात का, क्योंकि आगे से रमजान शुरू हो रहा है, रोजे के मसाइल शुरू, बल्कि आप कह लीजिए कि आगे से रोजे की बात शुरू हो रही है। शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये है रमजान और कुरान का ताल्लुक, कि इस कुरान को रमजान में पढ़ना, और इसमें इंशाल्लाह हम बहुत सारी बातें करते हैं अभी आगे जाकर। अब आयत का जो अगला हिस्सा है ना, ये कुछ मसाइल से मुतल्लिक है, जिसमें इंशाल्लाह हमने आपके लिए डिजाइन की है एक पूरी नशिस्त होगी, जिसमें हम रमजान के मसाइल सीखेंगे, गो थ्रू कर लेंगे कि रोजा किससे टूटता है और किससे नहीं, और इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में एक दिन पे हम इस तरह बात करेंगे। अब इस आयत को जरा सा समझ लीजिए। फमन शहीद मिनकुम मुशहरा, तुम में से जो इस महीने में हाजिर हो, मुशाहिदा कर ले, मौजूद हो, और शाहिदा से मुराद मुशाहिदा चांद भी है। उलमा कहते हैं कि चांद देखने का एहतमाम करना, और चांद देख लिया है चाहे एक मुस्तनद बंदे से गवाही मिल जाए, वो ये मुराद है। तो रोजा रखते वक्त आपने इस बात का एहतमाम करना है कि रमजान का चांद दिख गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हुकूमती सतह पे इसका एहतमाम है, नबी सल्लम के दौर में भी होता था। और ये भी याद रखिए कि रोजा तदरीज के साथ, यानी तदरीज के लफ्ज को अगर इंग्लिश में बोलूं तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, और वो क्या है कि ग्रेजुअलिटी, थोड़ा थोड़ा करके हुक्म नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला ने इस तरीके से हमारे लिए रमजान के इस रोजे को डिजाइन किया है कि पहले इसकी कैफियत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती थी, और यकीन कीजिए इस वक्त रोजे की जो कैफियत है ना, ये बहुत सारे मराहिल से गुजरने के बाद सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। पहली बात यह कि रोजे हर उम्मत पे फर्ज हुए, हमने कल के सेशन में भी बात की थी, हजरत नूह के दौर से थे, पिछली उम्मतों पे भी रोजे थे, आज भी आप देखते हैं तो क्रिश्चियंस भी रोजे रखते हैं, हिंदू भी रोजे रखते हैं, ज्यूस भी रखते होंगे। यानी अल्लाह ताला ने इस कुरान को एक ऐसी खूबी दी है कि इस रोजे के साथ सबका ताल्लुक है। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा रोजों की कैफियत है ना हमारी आपकी, ये असल में अल्लाह ताला ने बहुत ही हिकमत के साथ दी है। तो फमन शहीद मिनकुम शहर, आज के हुक्म के मुताबिक वो लफ्ज हैं कुरान पाक के जिनकी बुनियाद पे रोजा फर्ज है। फमन शहीदा मिनकुम शहरा फल यसुम, फल यसुम के लफ्ज को अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो बेशक कीजिए कि आपको फिर रोजा रखना होगा। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि रोजा पहले किसी और कैफियत में था, आप चाहें तो रोजा रख लें चाहे तो ना रखें, कितनी सहूलत दे दी, लोगों के ऊपर च्वाइस थी। और याद रखिए आज भी दावा का बेहतरीन नुक्ता यही है कि आप लोगों के ऊपर एकदम दीन को इम्पोज ना करें, चॉइस दीजिए। छोटे बच्चे हैं ना, नमाज पढ़नी आ जाइए बेटा, 6-7 साल की उम्र में बच्चों को इस तरह नमाज में साथ लगाइए। और इसी तरह जब थोड़े से आदी हो जाएं तो सिर्फ फर्जों पे ले आइए, जब थोड़ी फर्जों की बर्दाश्त हो जाए तो फिर सुन्नतें साथ लगा लीजिए, फिर नवाफिल हैं, फिर दूसरी चीजें भी हैं। तो फल यसुम्हु से पहले रोजे की कई कैफियत गुजरी। एक ऐसी भी कैफियत गुजरी कि चाहे रोजा रखो चाहे इसका कफारा दे दो। अब लोग यूज टू हो गए, जो पैसे वाले थे वो कफारा दे देते और जो हिम्मत और ताकत वाले थे वो रोजा रख लेते। और फिर आखिर में फल यसुम हो गया। ये लफ्ज आज मेरे आपके लिए दलील इस बात की कि रोजा रखना होगा। क्या मसाइल है वो हम बाद में कभी देखेंगे। इसमें भी रुख्सत दी, वमन काना मरीदन, पहली बात, जो बीमार हो, सिक पर्सन, कौन सी बीमारी जिसमें रोजा नहीं रखा जा सकता, जिससे बीमारी के बढ़ने का खतरा हो सकता है और जिससे आप कह सकते हैं कि किसी और तकलीफ में मुब्तला होने का मौका हो। अब ये नहीं है कि कट लग गया उंगली पे छोटा सा तो आप कहते हैं मैं तो बीमार हूं, मेरा तो खून निकल आया, नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो रमजान के मुतल्लिक बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं, वो रमजान के बारे में अपने बारे में क्या सोच रहे होते हैं कि शुक्र है रमजान में ही बीमार हुए। यानी एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज आपके साथ शेयर करती हूँ कि रमजान अल मुबारक में लोगों की मुख्तलिफ किस्में बन जाती हैं। मसलन, एक वो होते हैं जो खाने पीने वाले रमजानी हैं। बहुत सारे लोग रमजान को जानते ही नहीं, मगर सिवाय इसके कि ये खाने पीने का महीना है। जितने पकौड़े और समोसे हम रमजान में खाते हैं, कभी आगे पीछे खाए, और कराची और अमेरिका कनाडा में जितनी बिरयानी रमजान की इफ्तारियों में बनती है, बताइए कभी बनी। तो खाने पीने वाले मुसलमान वो अपने नफ्स को जो वो ख्वाहिश करते हैं ना वो देने की कोशिश करते हैं, कसरत से करते, सारा दिन यही सोचते रहते हैं आज इफ्तारी में क्या बनेगा। और मर्द ग्रोसरी जमा करते रहते हैं और औरतें कभी पकौड़ों का बेसन घोलती हैं और कभी बाकी चीजें। ठीक है, आप जानते हैं कि जितना ज्यादा इंसान खाता है ना उतना अल्लाह की इताअत में और इबादत में सुस्ती आने लगती है, फितरी सी बात है। खाली बदन आप भाग भाग के काम करते हैं तो बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए, इतना ना खा लीजिए सहरी में पराठे और दही और लस्सी के फजर पड़ी ना जाए, और उसके बाद अगर बिलफर्ज सोते हैं तो खट्टे डकार आए और सुबह उठते हैं कहेंगे मैं तो बीमार महसूस हो रही हूँ। ऐसा ना कीजिए, मुनासिब खाइए। और इफ्तारी में इतना ना खाइए और इतनी देर ना खाइए कि एक तो मगरिब चली जाए, और दूसरी बात है कि तरावी पढ़ने की हिम्मत ना हो। आप कहते हैं अब तो पेट हिल नहीं रहा, कम खाना चाहिए। फिर इसी तरह एक दूसरी किस्म के लोग होते सोते रहने वाले। बस लोग रमजान को जानते ही नहीं सिवाय इसके कि रमजान तो सोने का दिन है, दिन को सोते हैं और रात को भी सोते हैं, और रोजा रखा हुआ इसलिए सोना है। और यहां मैं माओं को भी थोड़ी सी नसीहत दूंगी, कई माएं अपने जवान होते हुए बच्चों को जब रोजे रखाती है ना तो कहती है सोते रहो, जोहर निकल रही है, ना 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 इसको नहीं उठाना इसका रोजा, असर आ गई नहीं उठाया, असर के आखिरी वक्त में कभी बच्चे को उठाया कि चलो आप इसको उठाते हैं क्योंकि अब इफ्तारी का वक्त करीब है, और फिर वो बेचारा जोहर भी पढ़ा और असर पढ़ा। ऐसा जुल्म ना कीजिएगा, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अगर सोना ही था तो उसके लिए अल्लाह ने राहत दे दी आपको, तो लिहाजा रोजा रखकर बहुत ज्यादा सोना ये भी पसंदीदा नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो इफ्तारी के मंतजर हैं, पहले ही दस्तरखान बिछने लगते हैं और साथ बैठे ही रहते हैं ताकि मगरिब नहीं पड़ते, कहते नहीं इफ्तारी करनी है। कुछ रमजानी ताजिर होते हैं जो अपनी तिजारत चमकाते हैं, उनके बाजार गर्म रहते हैं, महंगी कर देते हैं चीजें, बाजारों में रहते हैं इसलिए मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में जाएं भी तो करार नहीं आ रहा, भागते हैं जल्दी से क्योंकि दुकान पे गाहक होंगे। तो ये भी अच्छी किस्म के लोग नहीं होते। इसी तरह एक होते हैं चंदा बटोरने वाले, भीख मांगने वाले, कुछ दीन के नाम पे चंदे लेने देने वाले, सड़कों पे खड़े होकर या फिर मिंबरों पे बात करने वाले, और रोड्स पे आपको भीख मांगने वालों का अंदाज होगा, ये भी कोई पसंदीदा बात नहीं है। आपने मैंने क्या करना है, रमजान के महीने को अपनी इस्लाह का महीना बनाना। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ सालेहीन को देख लीजिए, तो उनके लिए रमजान बड़ा कीमती महीना होता था। वो इस महीने के एक एक मिनट और एक एक सेकंड का ख्याल रखते थे, अच्छे अमल करने के लिए अपने आप को फारिग कर लेते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो इस एक महीने में फिर काम का छोड़ देते थे। रातों को तरावियों और क़यामुल लैल की नज़र, और दिन को रोजे और जिक्र इलाही और कुरान के जरिए जिंदा रखते थे, और इस तरह मस्जिदें भी आबाद रहती थी और घरों में भी खैर होती थी। इस तरह के लोगों के लिए ही असल बात क्या है कि वो इसका ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर आप मरीज हैं और बहुत दुखी हैं, हाय मैं क्यों बीमार हुई, मेरा रोजा चला। अल्लाह ने आपको इजाजत दी, आप बिल्कुल पूरे शरह सदर के साथ रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसको बाद में पूरा करना है। फिर दूसरी कैटेगरी है वालाउ सफर, सफर पे हैं आप, फैदत मिन अय्याम अखर, तो रोजा छोड़ दीजिए लेकिन दूसरे दिनों में गिनती पूरी करेंगे। क्यों ये रुख्सत दी? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला चाहता है और तंगी का मामला नहीं चाहता। यानी अगर कहा जाता नहीं हर हाल में ही रोजा रखो, हर हाल में ही तुम्हें रोजा रखना है, बीमार है तब भी रखो, सफर पे हो तब भी हो, तो ये उसर हो जाता, युसर ना रहता। और ये क्यों कहा कि फैदा तुम इन यामिन उखर, दूसरे दिनों में गिनती पूरी करो? इसकी वजह क्या कि वली तुख मिलो लिद्दा, गिनती तो पूरी करनी है। देखिए कजा तो करनी पड़ेगी, आप क्लास छोड़ रहे हैं या आप रोजा छोड़ रहे हैं, इसको पूरा तो करना पड़ेगा। और आखिर में देखिए वली तो कबीरुल्लाह, और अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए, अला मा हदाकुम, इस पे कि उसने आपको हिदायत दी, वला अल्लकुम तशकुरून, और ताकि आप उसका शुक्र करें। ये तो कबीरुल्लाह क्या है? ईद की तकबीरात, नमाज ईद है ये। पूरा महीना रोजा रखो और ईद के दिन फिर शुरू में ही सुबह में नमाज से पहले ही तकबीरात का सिलसिला ऐसा बुलंद रखो। और बड़ाई किस बात पे? अल्लाह का नाम खुशी से क्यों लो कि अला मा हदाकुम, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे हिदायत बख्शी। एक जम लिखिएगा, हिदायत इतनी बड़ी दौलत है कि इसके पाने वाले को अल्लाह का नाम बुलंद करना चाहिए। और अल्लाह का नाम बुलंद कैसे होगा? वकब्बिर हो तकबीरा, पूरी दुनिया में इस नाम को आम कर दीजिए, इस कलाम को आम कर दीजिए। और लाल लकुम तश्करून के अब इंजॉय कीजिए, ईद आ गई, खुशियां मनाइए, बेहतरीन तरीके से लें। क्या पता चला? खुलासा कर देती हूँ अभी तक की जो बात है, और वो क्या है? रमजान कुरान का महीना है। फर्स्ट थिंग अपने लिए ये नोट कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत और समात और इल्म फहम के हसूल का अहतमाम है। यानी अब आपने मैंने इस रमजान के लिए कुछ नियतें करनी है, और वो क्या है कि हमने कसरत से कुरान की तिलावत करनी है, और इसके लिए अच्छे तरीके से आप कुरान पाक को पढ़िए, चाहे एक सफर पूरा करें। हमारे साथियों में एक छोटी सी कमी है, और वो क्या है? ज्यादा पढ़ने की कोशिश में गलत पढ़ जाते हैं। ये ना कीजिए, तिलावत कीजिए, गोल बनाइए अपने लिए कि आज इंशाल्लाह हम इस साल कम से कम एक दफा पूरा कुरान पढ़ने की नियत करते हैं, ठीक है? इसकी कोशिश कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से तिलावत करें। और इसका साथ ही दूसरा काम है समात, यानी आज मैं आपको चंद चीजें दे देती हूँ ताकि आप उसको फिर अपनी फैमिली में शेयर करके तो कोई एक अच्छा सा प्लान बनाकर अपने घर में लगा लीजिए, जिसकी वजह से फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके घरों में बहुत सारी खैर आएगी। और वो क्या है कि मैंने एक कुरान पढ़ना है और एक सुनना है। ये कैसे होगा? आप ये कीजिएगा, तिलावत तो आप खुद करेंगे ना, थोड़ी सी आवाज के साथ कि जिसमें आप खुद भी सुन सके कि आप क्या कह रहे हैं, अच्छी सी आवाज के साथ कुरान पढ़िए। अब आप में से हो सकता है कि किसी का कुरान पाक ठीक ना हो, हो सकता है कि बास लोगों को नहीं मौका मिला, तो आज ही नियत कीजिए, अभी भी कुछ दिन हैं, तो इसमें बेहतरीन तरीके से अपना ये सफर शुरू कीजिएगा, ठीक है? लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा नहीं भी आता ना, कम से कम अरब की गलतियां ना हो, हराम गलतियां ना हो, तो फिर ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक काम क्या करना है कि किसी का सुनिए, और ये इससे आप देखिएगा कि आपकी अपनी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी चीज। और वो क्या है कि आपने किसी को सुनना है। इसके लिए मैं आपको चंद नाम रिकमेंड कर देती हूँ, आप अपने लेवल को चेक करते हुए देख लीजिएगा कि क्या बेहतर है और कैसे बेहतर है। क्या आपने कुरान पाक को किसी भी अच्छे कारी की आवाज में सुनना है, ठीक है? अब किसकी सुने? अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जिसमें वाकई अल्लाह ताला ने बहुत सारी सहूलतें दी हैं। तो नंबर एक आप ये चेक कीजिएगा कि आपकी अपनी स्पीड क्या है। अगर आपकी अपनी तजवीद अच्छी है और कुरान पढ़ने का अंदाज मुनासिब है, तो फिर किसी जरा से मुनासिब से यानी फास्ट पढ़ने वाले कारी को मुंतखब कर सकते हैं आप। मसलन इसमें फ्लो के साथ पढ़ने वालों में सादुल गामदी का नाम लिख लीजिए, कारी मिशारी का नाम लिख सकते हैं आप, और इसी तरह इमाम सुदेस का नाम, इन तीन चार लोगों के नाम देखिए। दूसरी चीज ये कि नहीं, आप इतना फास्ट साथ चल नहीं सकते। करना क्या है कि आपने मुसहफ खोलना और तिलावत प्ले करनी है। आजकल फोन्स में भी हैं, आप दो चार लोगों को सुन लीजिए और उसमें से चूज कीजिए। दूसरी सूरत है कि नहीं, आप बहुत फास्ट नहीं चल सकते और आपने प्ले करना है और साथ फिर खुद भी पढ़ना है। और यकीन कीजिए, सब साथियों को एक टिप देती हूँ कि फैमिली टाइम बनाइए। मसलन आज का पारा मैंने अपने बच्चों, बीवी, शौहर, घर में जो बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, हम सब ने मिलके बैठना है। डाइनिंग टेबल पे अब खाना तो आ नहीं रहा और वो बेचारा उदास बैठा हुआ है, तो आप वहाँ सब इर्द गिर्द बैठिए, अपने अपने मुसहफ खोलिए, और जिसको भी ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों की समझ आती है वो तिलावत प्ले करें, और आप सब अपने अपने मुसहफ को देखेंगे और साथ पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी क्लासेस में हम करते हैं माशाल्लाह, अपने एडवांस कोर्सेज में स्पेशली। तो होता क्या है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी गलतियां दिखती हैं। कारी साहब पढ़ रहे हैं और आप रुक गए, तो इसका मतलब कि आपने कुछ छोड़ दिया, और दूसरी तरफ अगर वो पूरा कर चुके और आप पढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कुछ इजाफे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तिलावत और जो समात है ना, इस पर गौर कीजिएगा, इकट्ठा कीजिए, अच्छी सी आवाज में चिल्लाकर आप सब ऊंची बढ़े। जैसे कभी मदरसों में से बड़ी खूबसूरत आवाजें नहीं आती हुफाज की, मस्जिदों में शाम के वक्त जब नाजरा क्लासेस होती हैं तो जाएं तो एक समा बन जाता है, ये आपके घर में बनेगा इस साल इंशाल्लाह। नियत कीजिए, और इसमें कोई शर्म ना करें कि मैं बाप हूं तो मैं क्यों बोलूं, और मैं माँ हूं और बच्चे ये हैं वो, नहीं, आप सिखा रहे हैं। ये छोटे छोटे चिड़िया बच्चे, छोटे आपको जो घर में दिखते हैं ना घूमते फिरते, ये बेचारे आपका मुंह देख रहे होते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो आपका फैमिली टाइम बहुत अच्छा होगा, बॉन्ड बनेगा, और घर के बहुत छोटे बच्चे हैं ना, मिसाल है कि बेबीज दो दो तीन तीन चार चार साल के, आप उनको उस वक्त कोई दूसरी किताब पकड़ा दें जिसपे कोशिश करें पिक्चर्स ना हो लेकिन एक बुक की फॉर्म हो, और उन्हें भी के बैठे, वो क्या लेंगे इसमें, सब्र लेंगे, ये उनकी तरबियत हो रही है। एक जुमला लिख लीजिए, आपको टिप्स तो बहुत सारी मिलेंगी आगे भी, लेकिन हम इस पूरे सफर में फैमिली टिप्स बहुत सारी लेते हैं, हमेशा ही लेते हैं, क्योंकि हमारा 90% तो हमारा वर्क फैमिली से गुजरता है, और इस दफा तो हो सकता है 100% गुजर रहा है। तो बच्चों को इग्नोर ना कीजिए, उनको उछलने कूदने के लिए ना छोड़िए। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब आप उनको वो करने को कहें जो आप कर रहे होते हैं। माँ पढ़ती है तो बच्चा भी किताब मांगता है, माँ रोटी पकाती है तो बेटी आटा मांगती है। तो इंशाल्लाह आपने इस टाइम को लेना। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं फास्ट नहीं चलेंगे, मीडियम पेस पे है, तो मेरी नजर में अबू बकर शात्री बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है स्लो पढ़ने में, मीडियम है, स्लो भी नहीं और मीडियम नहीं, और खूबसूरती भी है उसमें। इसी तरह से इदरीस अफकर साहब है, और अगर आप समझ दें कि नहीं जी इतना लंबा कौन बैठे, हमें तो आधे घंटे के अंदर पारा पूरा करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत फास्ट पढ़ते हैं। और इसी तरह से आप कुछ और अपनी पसंद के भी कारी देखिए, ये कीजिए इस साल। आप लोग एक प्लानर बनाइए, इन चंद दिनों में ही बच्चों को, घर वालों को साथ लीजिए, चलो बेटा आओ पूरे दिन का टाइम टेबल बनाते हैं। और चूंकि आजकल घर में नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, तो पांच नमाजों के बहुत प्यारे टाइम टेबल बच्चों से बनवा कर लगवाइए। यकीन कीजिए बच्चे आपको बताएंगे, हाय पांच कब बजेंगे, नमाज पढ़नी है। तो इनको एक्टिविटीज की तरह साथ रखिए। और फिर इसी तरह दूसरा हिस्सा जो आपने इस दफा रमजान और कुरान में करना है, वो क्या है कि इल्म और फहम का हसूल। इल्म कैसे आएगा, जब आप दौरे कुरान करेंगे, और फहम कैसे हासिल होगा, जब उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। तो दो चीजें मैंने आपके साथ रखी हैं, रमजान कुरान का महीना है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान। क्या कीजिए कि कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे और सुनेंगे, इकट्ठा कर लें या अलग, अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे खुद अपना पढ़ने की आदत है, कोई हरत नहीं। और दी बेस्ट टाइम फजर की नमाज से लेकर सनराइज के बीच में, इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, सुबह के वक्त का कुरान पेश किया जाता है। ठीक है, तिलावत आप उस वक्त कर लीजिए। और समात कब करें आप, हमारी सिस्टर्स के लिए बहुत बेस्ट टाइम है, किचन में काम करते हुए तवज्जो उधर रखते हुए बगैर बोले हुए ऊंची आवाज से लगा लीजिए और साथ सुनते रहिए। और ब्रदर्स भी अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, दोनों को अलग करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आप अपनी सहूलत से करें। और दूसरा आपको गोल दिया है इल्म और फहम का, इसके लिए आपके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से ये इख्तमाम है कि हम हर दिन एक पारे का तर्जुमा और उसके मुख्तसर पॉइंट्स लेंगे, और हम इंशाल्लाह ताला दौरे हाजिर के फितनों को सामने रखेंगे। फिर दूसरी चीज जो नेक्स्ट थिंग है आपके पास वो क्या है कि आपने इस महीने को कुरान का महीना बनाना है। इस महीने का असल हासिल ही यह है कि कुरान मजीद को सुना जाए, पढ़ा जाए, सीखा जाए और इस पर अमल की कोशिश की जाए। तो कोशिश करनी है कि इस महीने में एक पूरा दौर कुरान का पूरा हो, तर्जमे के साथ पढ़ेंगे क्योंकि उसमें हम पूरा तर्जमा पढ़ते हैं कुरान का, और इसका मकसद यह है कि आप कुरान पाक को अपने अंदर जज्ब कर लें और इसके साथ ही साथ अपने दिल और रूह के ताल्लुक को गहरा कर लें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। आप रमज़ान और कुरान साथ साथ क्यों आते हैं अक्सर, कि कुरान और रमज़ान में कुछ मुश्तरक खसूसियात है, यानी कॉमन थिंग्स हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। वो क्या है, पहले हदीस सुन लीजिए, और ये सही मुस्लिम की भी रिवायत है और मुस्नद अहमद और तबरानी और हाकिम में भी है कि आपने फरमाया कि रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के लिए शिफात करते हैं। रोज़ा अर्ज करता है कि अल्लाह मैंने इसको दिन में खाने पीने से रोके रखा, मेरी शिफात कबूल कर लीजिए, और कुरान कहता है कि अल्लाह मैंने रात को इसको सोने से रोका, मेरी शिफात कबूल कीजिए, बस दोनों की शिफात कबूल कर ली जाएगी। सही रिवायत है। तो तीन चीज़ें हैं, कुरान और रमज़ान। नंबर एक, आपको मुझे तकवा देते हैं। क्यों रोज़े रखें, कल का सेशन जहन में ले आइए। तो पहली आयत जो हमने पढ़ी थी कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अललज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तकवा मिलता है रोज़े से, तकवा मिलता है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह इज़ वॉचिंग मी। इस पे एक बात बड़ी अच्छी सुनी थी, आपको भी सुनाती हूँ, कि एक बच्चा किसी वजह से अपने मामू की कस्टडी में आ गया, जो बहुत नेक और आलिम थे। तो बच्चा देखता था कि मेरे मामू रात के वक्त उठते हैं और तहज्जुद पढ़ते हैं और नमाज कुरान के साथ गहरा शगफ है। एक दिन कहने लगा कि मामू मैंने भी रात को नमाज के लिए उठना है। तो बच्चा चूंकि छोटा था तो मामू ने उसको एक एक्टिविटी दे दी कि बेटा बच्चों की तहज्जुद क्या होती है, अब आप इसको बच्चों की तहज्जुद पे ऐसे ही सुन लीजिए, कोई कानून न बना दीजिए कि ये कोई लोगों को लगे शायद कुरान की या हदीस की बात है, सिर्फ एक तजुर्बे की बात है जो किसी एक ने की। उसने कहा कि जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाओ ना तो 10 दफा ये जुमला बोलो, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह इज वॉचिंग मी, और इसी तरह जब सुबह उठो तो 10 दफा ये जुमला बोल दो। मामू ने वो एक्टिविटी दी और आप जाननी है कि बच्चों को एक्टिविटीज कितनी प्यारी लगती हैं, वो तो उस पर रेडी हो गया, सुबह शाम यही हुआ। वो बच्चा बाद में जवान होने पे एक बहुत ही नेक और मुत्तकी जवान में ढला। जब लोग उससे पूछते थे कि आप इतनी छोटी उम्र में इतनी रग़बत कैसे रखते नेकियों से, तो कहते थे कि मेरे मामू का सिखाया हुआ ये जुमला कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसने मुझे जवान होने पे भी किसी इधर उधर की चीज़ में पढ़ने ही नहीं दिया, मैं कोई गलत चीज़ देखना चाहूँ तो मुझे ये जुमला याद आता है। तो यही चीज़ आपको रोज़े से भी मिलेगी और यही चीज़ आपको कुरान से भी मिलेगी कि तकवा आएगा। ये 30 पारे आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा कर देंगे, अल्लाह का खौफ आने लगेगा। और दूसरी चीज़ देखिए कि शिफात, इस हदीस में आपने देखा ना शिफात हो रही है, सिफारिश, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क़यामत का दिन है, पसीनों में डूबे हुए हैं, और इतने में आपका ये कुरान का दौर आता है और कहता है अल्लाह बड़े मुश्किल हालात में इन्होंने कुरान पढ़ा था, ए अल्लाह इनको बख्श दे, तो अल्लाह ताला इसको माफ़ करेगा, इसको कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरी चीज़ है कुर्ब इलाही, ये मेरी बात पे यकीन कर लीजिए, और अगर आप पहले से खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आप खुद भी इसके गवाह बनेंगे कि कुरान का कट्ठा एक दफा पूरा रमजान के इर्द गिर्द के मौके पे पूरा कर लेना आपको अल्लाह के करीब करता है। आज भी ऐसी हजारों बहनें होंगी कि जो कहती हैं कि हमने रमजान में दौरे कुरान किया तो उसके बाद हमारे अंदर ये शऊर आ गया, और जितना ज्यादा आप और मैं इस चीज के ऊपर चलते जाएंगे अल्लाह ताला आपसे मुझसे खैर के मामले करता रहेगा। अब सवाल पैदा होता है कि जब हम ये कुरान सीखेंगे सुनेंगे तो क्या कुरान पाक हमसे कोई मुतालबे भी करता है, कुछ डिमांड्स हैं इसकी? तो बिल्कुल है। कुरान पाक की चंद आयात आपसे शेयर की गई, मसलन किताब अनज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरु आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये एक बड़ी बाबरकत किताब है जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ नाजिल की है ताकि ये लोग इसकी आयात पे गौर करें और अकल और फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। कितने बदनसीब होंगे वो शख्स जिनके बारे में ये कहा जाए कि आमत के दिन اور اللہ کے نبی کہیں کہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے. تو پہلی چیز دیکھیے کہ آپ نے تدبر بھی کرنا ہے اور تذکر بھی کرنا ہے. قرآن پڑھیں تو غور و فکر کیا, یہ لفظ ایسے کیوں ہیں, یہ یہاں بسمی کیوں ہے, میم کے نیچے زیر کیوں ہے, لفظ اللہ پہ پیش کیوں ہے, اور یا تذکر نصیحت بھی لینی ہے. اور اگر آپ کو یہ سب سن کے مشکل لگ رہا ہے, قرآن بڑا مشکل ہے, تو پھر سورت قمر کی آیت 54 لے لیجئے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے, تو کہیے جی اللہ تعالیٰ میں ادھر موجود ہوں. تو یاد رکھیے سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کچھ امیین کا ذکر کیا, اور ساتھ ہی کیا کہ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, وہ کتاب نہیں جانتے. تو قرآن کو نہ جاننے والا امی ہے. دوسری بات ہے, جو کتاب کا حق نہیں ادا کریں گے تو قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں شکوا کریں گے. اور تیسری بات ہے کہ قرآن کو جن لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا ہو تو قیامت کے دن قرآن ان کے گلے میں پڑا ہوگا اور شکایت کرے گا کہ اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا, اب آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرمائیں. تو انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق جوڑیں, اس کتاب کے ساتھ جوڑیں, بہت ساری باتیں ہم کرتے رہیں گے. تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اور ساتھی بھی اس پہ غور و فکر کریں, اور دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے آسان کی. کیونکہ دیکھیے نا, ہم نیا نیا سیکھنا شروع کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے بہت ساری باتیں کر لیں, سن لیں, کیا کیا کریں گے, تو بس اپنے لیے پن پوائنٹ کیجئے کہ کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے. اگر آپ ماشاءاللہ پہلے ہی بہت کچھ کرنے کرانے والے ہیں, تو پھر آپ کو ضرور کسی کو کوئی ایک ٹپ مل جائے گی, کسی کو ایک. ضروری نہیں کہ آپ سارے ایک ہی پیس پہ چلیں, اپنے گھر کو ساتھ رکھیے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں گے آپ, ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ تعالی یہ جو دن گزرے ہیں اس کے دوران اپنے آپ کو جسمانی, قلبی, روحانی طور پہ جس طرح تیار کرنا ہے, اور اللہ تعالی آپ کے میرے لیے اس کو آسان کر دے. جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان دنوں کا فائدہ اٹھانے والا بنائے, اور ہم اس کامیاب تاجر کی طرح ہوں کہ جو ایک ایک موقع سے فائدہ بھی اٹھائے, اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ وقت پہ فیصلہ کرے. آپ نے اگر اس رمضان کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارنا ہے نا, تو اس کا فیصلہ کرنے کا وقت آپ ہے. آج, ٹوڈے, الان, یہ جن دن جو رمضان سے پہلے کے ہیں, جو ہی رمضان شروع ہوگا نا, اس کے بعد پھر ہم کسی اور موڈ میں چلے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں وہ اصل میں ذہنی تیاری کے لیے بھی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وقت پہ تیاری شروع کر لے وہ بعد میں بہت کامیاب ہوتا ہے.